बौद्ध पूर्णिमा है और क्या शास्त्रीय ढंग है बौद्ध पूर्णिमा मनाने का, वो हम समझेंगे। बौद्ध पूर्णिमा शास्त्र अनुसार एक दिन पहले से ही निमंत्रण प्रारंभ हो जाते हैं। शची माता ईशान ठाकुर को निमंत्रण देने के लिए भेजते हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु को और श्री अद्वैताचार्य जी को, तो एक दिन पहले ही निमंत्रण पहुंच जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य ये सुबह ही आ जाते हैं महाप्रभु के स्थान पे और आरती भोग इसके पश्चात महाप्रभु को निवेदन किया जाता है कि महाप्रभु मंडप में जाके विराजमान हो, तो महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है। स्वर्ण चौकी पे महाप्रभु विराजमान होते हैं, श्रीवास पंडित जो हैं वो अभिषेक करते हैं और जो गदाधर पंडित हैं वो विधिवत मंत्रों का उच्चारण करते हैं और जो दोनों प्रभु हैं, दोनों प्रभु गीत वाद्य नर्तन कीर्तन त्रिजग के सेवा, त्रिजग के त्रिक, त्रिजग के त्रिक मतलब कि गाना भी, नृत्य करना भी और वाद्य बजाना भी। हम में से कुछ लोगों को प्रणाली प्राप्त होगी तो हमारे को सेवा में प्राप्त हो सकता है, त्रिजग के त्रिक यही सेवा, नित्य सेवा, गाना भी बजाना भी नृत्य करना भी ब्रज में मंजरी स्वरूप। तो यहां पे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य गान करते हैं, नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं और कई कई प्रकार के विविध प्रकार के पेयों से लिक्विड से महाप्रभु का अभिषेक किया जाता है। इसी समय होता है महाप्रभु का अभिषेक, जिस समय अभी मंदिर में होगा। जो शाम को किया जाता है वो इतना उचित नहीं है और जो रात को भगवान कृष्ण को भी 12 बजे किया जाता है वो भी उचित नहीं है शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम देखें तो। शास्त्र में सब बताया गया कि सनातन नवद्वीप में किस प्रकार से अभिषेक होता है, सनातन ब्रज में किस प्रकार से अभिषेक होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवश्य रात को 12 बजे हुआ था, परंतु जन्माष्टमी हर वर्ष मनाई जाती है गोलोक में भी, परंतु जो गोलोक में जन्माष्टमी मनाई जाती है नंद बाबा रात को 12 बजे नहीं सब पानी और सब डालना शुरू कर देते, एक दिन पहले ही निमंत्रण दिया जाता है और सुबह ही प्रातः ही सब अभिषेक होता है। उसी प्रकार से महाप्रभु का जो जन्म है वो सायंकाल में हुआ था, परंतु जो अभिषेक है वो सायंकाल नहीं होता, अभिषेक जो है वो सुबह ही होता है। तो यहां पे अभिषेक करते हैं और फिर उसके बाद फिर महाप्रभु का श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद स्वरूप दामोदर आरती करते हैं। तो ये है विधिवत तरीका गौर पूर्णिमा का। और एक और महत्वपूर्ण बात, केवल गौर का ही अभिषेक किया जाता है, बाकी सबका नहीं। जिसका जन्मदिन है उन्हीं का अभिषेक किया जाएगा, ये नहीं कि दोस्त भी आके साथ में बैठ जाएंगे, नहीं। तो जब हम आज हम अभिषेक देखेंगे तो हमको पता चलना चाहिए कि मंत्र उच्चारण कौन कर रहे हैं, गदाधर, और अभिषेक कौन कर रहे हैं, आरती स्वरूप। तो इस प्रकार से हम, नहीं तो हम कई भक्त हमसे पूछते थे कि जब हम अभिषेक देखते हैं आरती करते हमें क्या सोचना चाहिए, जब तो हमें अष्टकालीन लीला के बारे में मालूम नहीं होगा तब तो हम सही रूप से सोच नहीं सकते। अब हम यही अभिषेक देखते हैं एकदम हम वेरी वेल सोच सकते हैं कि हम सनातन नवद्वीप में भी वहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो बिना अष्टकालीन लीला जाने हम सही रूप से गौर पूर्णिमा या कोई भी त्योहार जो हम मना ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। उसके बाद महाप्रभु को भेंट देते हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, अनेक अनेक भक्त। फिर उसके बाद महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को और अद्वैताचार्य को, तीनों को विशेष आसन देके बिठाती है शची माता और सब उनको नारायण जी का जो प्रसाद है वो देते हैं। महाप्रभु के घर में नारायण के विग्रह हैं, तो नारायण प्रसाद वहां पे दिया जाता है। उसके बाद पार्षदों को जो होता है, फिर महाप्रभु विश्राम करते हैं, चरण संवाहन करते हैं और उसके बाद से जो नित्य लीला होती है, जो अष्टकाली लीला होती है, नित्य लीला है, वो ये लीला रोज होती है। तो वो लीला महाप्रभु के आविर्भाव के दिन भी वही लीला उसके बाद नित्यवत चलती रहती है। शाम को जो लीला है वो शाम के वक्त जो नित्य लीला है वो चलती रहती है, शाम को अभिषेक नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें ये अभी गौर पूर्णिमा अभिषेक जो है ये मनाना चाहिए। महाप्रभु दाता शिरोमणि है, करुणा घन है, समस्त भगवत स्वरूपों में समधिक करुणा जो है वो भगवान श्री कृष्ण में है, समस्त भगवत स्वरूपों में, यदि हम विष्णु के साथ देखें। परंतु आप खुद सोचिए कि जब इतनी करुणा भगवान श्री कृष्ण में है और साथ में जब वो राधा के साथ मिल जाएं, युगल रूप हो जाएं और राधा रानी क्या है, करुणामयी, तो कितनी करुणा हो जाएगी। तो करुणा जो है, महाप्रभु का आने का मतलब ही है कि करुणा, जीवों के ऊपर करुणा बरसने का समय आ चुका है। जब महाप्रभु यहां पे आए थे प्रकट लीला में, तो जिसको भी देखते थे उसको प्रेम भक्ति दे देते थे, दर्शन देने मात्र से, दृष्टि मात्र से, हरिनाम सुनाने मात्र से प्रेम दे देते थे। जब महाप्रभु यहां पे अवतीर्ण हुए थे, बिना कोई साधन किए, कोई साधना की आवश्यकता नहीं। अब जो है समय थोड़ा सा बदल गया है, अब महाप्रभु के बताई हुई जो साधना है, सत परंपरा से जुड़ के यदि साधना करेंगे तो उससे प्रेम भक्ति लाभ होगी। पहले बिना साधन किए महाप्रभु की दृष्टि मात्र से ही प्रेम भक्ति मिल जाती थी। जब यही देखा अद्वैताचार्य ने कि सबको प्रेम भक्ति मिल गई, पूरे संसार में एक एक व्यक्ति को प्रेम भक्ति मिल गई, तो अद्वैताचार्य ने बोला, अद्वैताचार्य की बात जो है केवल महाप्रभु समझते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य कौन है, महाविष्णु। अद्वैताचार्य ने बोला, आप जिस कार्य के लिए आए थे, चावल खाने, सबने चावल खा लिए, सबका पेट भर गया, अब और किसी को भूख नहीं है। ये कोड वर्ड में अद्वैताचार्य ने बोला महाप्रभु को, और महाप्रभु को ये बोलने का मतलब ये था कि आप जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य शेष हो गया, पूरा हो गया, अब आप वापिस अपने लीला, यहाँ पे लीला संपन्न कर सकते हैं। तो जब लीला संपन्न करने वाले थे महाप्रभु, तो उन्होंने अद्वैताचार्य को बुलाया, अद्वैताचार्य को बोला कि देखो, मैं जो यहाँ पे आया हूं, मैंने सबको प्रेम भक्ति दे दिया, तो ये मेरा कार्य तो पूरा हो गया, परंतु मेरा एक कार्य अभी भी शेष रह गया है। जो मेरे आश्रित जन होंगे भविष्य में, मेरे आश्रित जन मतलब जो सब परंपरा से मेरा आश्रय ग्रहण करेंगे, मैं उनको भी मंजरी स्वरूप देना चाहता हूं, तो तुम मुझसे वर मांग लो कि मैं सबको मंजरी स्वरूप दूं जो सब परंपरा से आश्रय लेंगे। तो अद्वैताचार्य ने महाप्रभु की इच्छा से ही ये वर मांगा। महाप्रभु ने बोला कि तुम्हारी इच्छा से ही तो मैं यहां अवतीर्ण हुआ हूं। तो महाप्रभु जो है अद्वैताचार्य की इच्छा से अवतीर्ण हुए, सबको प्रेम भक्ति दिया। अब वो अद्वैताचार्य को ही माध्यम बना के बोल रहे हैं, तुम इसे मांग लो ताकि भविष्य में भी सबको प्रेम भक्ति लाभ हो। तो अद्वैताचार्य ये बात मांग लेते हैं कि हे महाप्रभु, आप सबको मंजरी स्वरूप दें। तो महाप्रभु उन्हें ये वर दे देते हैं। फिर महाप्रभु को अद्वैताचार्य कहते हैं कि एक कृपा और करें। हालांकि जीव पे इससे ऊंची कृपा हो नहीं सकती कि उनको मंजरी स्वरूप मिल जाए, इससे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, पर फिर भी एक कृपा और करें। एक स्वरूप से तो आप सबको मंजरी रस आस्वादन करने के लिए आप सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छा, एक स्वरूप से अपनी सेवा भी दें। तो हमारे जो दो स्वरूप होते हैं, एक में नवद्वीप में भगवान श्री गौरंग महाप्रभु की सेवा और एक में राधा कृष्ण की सेवा, ये अद्वैताचार्य की कृपा से है। अद्वैताचार्य बोलते हैं कि दो स्वरूप दीजिए क्योंकि आपकी भी सेवा करनी है। तो अद्वैताचार्य की कृपा से सामान्य जीव को भी दो स्वरूप मिलते हैं, जो कि सत्ययुग के तपस्वी ज्ञानी संतों को भी प्राप्त नहीं हो सकते। तो यह विशेष 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 युग है और महाप्रभु यही दान देने के लिए इस धरातल पे अवतीर्ण हुए थे। और आज का ही वह पावन दिन है गौर पूर्णिमा, तो भगवान से हम प्रार्थना करें कि जिस कार्य के लिए वो आए थे, विश्वंभराय धीमहि तन्नो गौरः मुझे भी प्रचोदयात, प्रेम भक्ति दान दें। गौर मंत्र करते हैं हम लोग, मैं गौर को जानता हूं। कैसे जानता हूं? सब लीला विचार करके, तत्व विचार करके तभी तो जानेंगे। हाँ, वही गौर है ना जिन्होंने मंजरी सेवा भी दिया और अपनी सेवा भी दिया। किसको? सबको। विश्वम भराय सबको दिया। तन्नो गौर, हे गौर, ये प्रेम भक्ति, ये प्रेम सेवा मुझे भी दान दे। तो हृदय से गायत्री करेंगे, रोज ही करना चाहिए। परंतु तो आज का विशेष विशेष दिन है तो आज तो महाप्रभु से गिड़गिड़ाना चाहिए कि जो लेना है ले लो महाप्रभु, अपनी प्रेम सेवा दे दो। और डरना नहीं चाहिए, जो लेना है। वैसे भी भगवान हमारे से क्या लेंगे? वो दाता शिरोमणि है, हम भिखारी शिरोमणि है। सबसे ऊंचा व्यक्ति, सबसे निकृष्ट व्यक्ति से क्या लेगा? कुछ नहीं लेगा। एक ही चीज लेगा, वो भी करुणा करके हमारे अनर्थ। कि हे महाप्रभु, हमारे जन्मों जन्मों के अनर्थ, जिनसे हम जुदा नहीं होना चाहते, उनसे हमें जुदा कर दीजिए। अनर्थ क्या है? वास्तव में जो गौड़िया वैष्णव हैं, गौड़िया वैष्णव मतलब कौन बोलेंगे? गौड़िया वैष्णव जो रूप गोस्वामी के, महाप्रभु के जो वास्तविक फॉलोअर हैं, उनके लिए पंच तत्व राधा कृष्ण की उपासना के अलावा जो कुछ भी है सब अनर्थ है। आप ये सोचें कि मैं कोई गोपाल की सेवा करूंगा या विष्णु की सेवा करूंगा, वो भी अनर्थ है। बाकी तो दूर की बात है, जो हमारे जो इतने सारे बोरे भरे हुए हैं अनर्थ के, वो तो अलग बात है। विष्णु तत्व की उपासना भी एक गौड़िया वैष्णव वैष्णव के लिए एक लग्जरी है। विष्णु की उपासना की आवश्यकता नहीं है। मन जब भगवान में रमा होगा तो बाहर कैसे जाएगा? अब गोपियों का उदाहरण देखें, जब नारायण सामने आए रासलीला में, जब गोपियां कृष्ण अंतर्धान हो गए, जब नारायण सामने आए, कौन नारायण थे? वो कृष्ण ही चतुर्भुज रूप में नारायण बन गए। तो बोला कृष्ण है कहां है, उनके बारे में बताओ। नहीं है तो आप नॉट इंटरेस्टेड, नमो नमः, नारायण है नमो नमः। तो सोचिए कि नारायण को भी हम दूर से प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारा जो हमने जो नारायण को भी हृदय नहीं देना, जो हमने अपनी पत्नी को हृदय दिया हुआ है, अपनी पति को हृदय दिया हुआ है, बच्चों को हृदय दिया हुआ है, व्यापार को हृदय दिया हुआ है, वो कितना निकृष्ट है सोचिए। ये सब अनर्थ है। भगवान के अलावा किसी को भी हृदय देना ये अनर्थ है। भगवान को भी हृदय देना अनर्थ है यदि वह गौर और राधा कृष्ण नहीं है, विष्णु तत्व में भी किसी को भी। तो जो हमने अपना जो अपनी फिलॉसफीज बनाई हुई है उसको त्याग दें। देखिए महाप्रभु परम करुणा में है। अगर हमारी वास्तविक प्रार्थना होगी कि भगवान मेरे सब अनर्थ ले लो, मेरी आसक्ति ले लो, मेरे पति से, मेरे पुत्र से, मेरी पत्नी से, धन से, तो वो ले लेंगे। वह करनी पड़ेगी प्रार्थना, ले लो। या तो भगवान व्यक्ति ना हो तो बात समझ आती है कि ऐसे ही बोले जा रहे हरे कृष्ण, कुछ हो नहीं रहा। भगवान व्यक्ति हैं, वो हमारी सारी बातें मानने को तैयार है, पर हम हृदय से याचना करें तब तो हम हृदय से याचना करें कि भगवान मेरी सारी आसक्ति ले लो, अपने चरणों में प्रेम भक्ति दे दो, तो क्यों नहीं होगा। आप किसी गंदे से गंदे व्यक्ति डाकू को भी बोल दें कि मेरे को कृपा करो रोज जाके, वो भी कर देगा। क्रूर व्यक्ति, वो तो परम करुणों में आए ही इसलिए हैं प्रेम भक्ति देने, तो वो क्यों नहीं करेंगे। वो क्यों इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो सोचिए हम बोले कि मेरी सारी आसक्ति छीन लो, तो हमारे मुंह से बोलने में भी डर रहेगा कि सारी आसक्ति। हाँ बोले मेरे को स्फूर्ति नहीं होती कुछ लीला से, वो तभी होगा जब यहां से जो जो लीलाएं अपनी डाली हुई है सो कॉल्ड करके उसको बाहर निकालना होगा। जो व्यक्ति डाले हैं उनको बाहर निकालें, जिस परिमाण में यहाँ के व्यक्ति, यहाँ की वस्तुएं, यहाँ के चित्र बाहर निकलेंगे, उसी परिमाण में आध्यात्मिक जगत के वस्तु व्यक्ति भाव आएंगे। और जब तक हमारे मन में, हमारे हृदय में आध्यात्मिक चिन्ह में जगत की वस्तु व्यक्ति भाव नहीं आएंगे, तब तो हम क्या रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड डिवोटीज। डिवोटीज तो है ही, भक्ति में तो आ ही गए हैं, पर जब तक हम सही रूप से आश्रय नहीं लेंगे तो अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति नहीं होगी तो फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी तो कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार। फ्रस्ट्रेशन मतलब कोई सुख नहीं किसी प्रकार का, तो भक्ति में आने के बाद भी फिर दुखी रहेंगे। तो जब आ गए हैं तो यही करें, हृदय से बोले भगवान सब अनर्थ ले लो, यही तो हम है क्या देने के लिए भगवान को अपने अनर्थों के अलावा। प्रेम भक्ति तो वो देंगे, स्वरूप शक्ति की कृपा से प्रेम भक्ति मिलती है नहीं हृदय में, हमारे हृदय में कोई प्रेम भक्ति वगैरह कुछ नहीं है। बस जी के हृदय में केवल एक चीज होती है, अनर्थ अपराध। तो वो प्रेम भक्ति देंगे, हमको सिर्फ हाथ खड़े कर देने हैं, आई एम रेडी नाउ भगवान, आई एम रेडी प्लीज गिव, ले लो छीन लो ठीक कर दो मुझे। तो यही हृदय से प्रार्थना करें और अपनी गौर पूर्णिमा जो हम सेलिब्रेट करने आए हैं उसको सफल बनाए, नहीं तो बहु जन्मे यदि करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए कृष्ण पदे राधा पदे गौर पदे प्रेमदन। आज की कथा को यही विराम दूंगा, आप में से यदि कोई भक्तजन प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते। वास्तव में छोड़ना फिजिकली नहीं है, इट्स ऑल हियर इट्स ऑल इन द माइंड, यहां से छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। महाप्रभु के लगभग सारे भक्त कुछ उंगलियों में छोड़ दें तो सभी ग्रस्त हैं। कुछ लोग हैं सन्यासी बस, बैरागी अकिंचन बाबा लोग, उसके अलावा सब भक्त हैं, पर छोड़ा उन्होंने भी हुआ है। कहां से? यहां से। फिजिकली छोड़ना है कुछ नहीं है, हमारा जो भक्ति है वो त्याग संप्रदाय नहीं है, क्या है? वैराग्य विद्या, निज भक्ति वैराग्य, यहां से छोड़ना है। फिजिकली कुछ भी एक्सेप्ट करना, उससे कुछ करना देखो, नहीं तो गौर पूर्णिमा मना नहीं पाएंगे हम लोग। हम उन्हें बोले जो आप देने आए हो दे दो, भाई यही बोलना है, जो ले जो मेरे पास खराब चीजों से हटा दो। ठीक है, वहां कोई प्रश्न है किसी का?